कैसे हाल हैं आपके? आप ये नहीं सोचे कि मैं सुबह तक आपको काम करने दूंगी, इस बात को भूल जाएं।
यकीनन खुशी इस बात की है कि अब अपना नाम तब्दील नहीं करोगी।
मैं नहीं कहती कि जो कुछ आपने देखा है सुना है सबका सब बकवास था। अभी इतनी बेदीन नहीं हुई, ना ही मेरा ईमान और अकीदा खत्म हुआ है। लेकिन दादा जान, ये ख्वाब माहे रमजान की पहली रात को आया है, इसको कहूंगी तो गुस्सा आ जाएगा।
मेरी अकल को परेशान कर दिया है।
क्यों नहीं कहते कि दिल परेशान है? ये मैं हूँ जिसका दिमाग परेशान होता है, तो मेरी रूह और दिल भी परेशान होता है। लेकिन आप कैसे आदमी हैं? आपने भी बगैर देखे भाले करम के सामने सब कुछ कह दिया।
अरे इसको भी अब थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा ताकि हिम्मत पैदा हो। मेरी अकल परेशान है लेकिन दिल अभी मुतमईन है कि इस किताब खुदा में कोई राज है। फोन नंबर उसे दे दिया कि जब काम से वापस आए तो फोन कर ले।
फोन करने की जरूरत नहीं है, आपका मकसद तो उसका राज जानना है ना। मैं आपसे कहती हूँ कि इस कुरान का जाहिर अजीब है कि कुछ सादा दिल अफराद आपकी तरह इसको सही कर लें, लेकिन उसका बातिन बिल्कुल उसी कुरान के बातिन जैसा है जो आपके कमरे में है, मेरी जेब में है, अकरम का है और बाकी कुरान जैसा।
नहीं, इसका ये राज नहीं है। मगर क्यों इस महीने में इस ख्वाब के साथ ये कुरान मेरे हाथ में आया है?
दादा जान, आप वो इंसान नहीं हैं जो हर वक्त मुझे याद दिलाता था कि हर वक्त रहमत के दरवाजे इंसान पर खुले हैं, शैतान उसके बराबर में शर व फसाद का दरवाजा खुलता है। ये किताब इंसानों की हिदायत के लिए है, अगर ना अहलों के हाथ में चली जाए तो गुमराही का बायस बनती है। ये बात सब कुरानों में है।
कल को अगर जिंदगी रही तो पता चलेगा कि ना अहल गुमराह कौन है।
अरे बाबा, मैंने कब कहा कि इस आयत का मतलब आप हैं? मैं कह रही हूँ
नहीं हूँ, कल तक बदतरीन में ही मतलब था। कहो कि मेरी तरह के गधे जो तौरात को सिर्फ पीठ पर उठाए हैं, लेकिन कल को तुम पर साबित करूंगा वो लोग जो मुझे सुनते हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं। जिस वक्त कुरान आता है मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूं तो वो कहते हैं कि यही निजात का बाइस है।
एक बात आपने ये मुझे उस वक्त बताई थी कि कौन है जो तुम्हारे साथ कुरान पढ़ते हैं? अच्छा, इस आखिरी को जैसे नहीं सुना क्योंकि मेरी ताकत बाहर है। लेकिन दादा जान, आप खुद कहते हैं इस किताब के आने से पहले आपकी तवज्जो थी, आप मुतमईन हैं कि इस कुरान का जाहिर बिल्कुल उस आईने की तरह नहीं है जो आपने अपने बाबा को ख्वाब में दिया था।
क्यों नहीं, तो इसका बातिन जानने के लिए कल बहादुरी के घर चलेंगे।
हाँ हाँ, कल फिर मुझे अपने साथ लेकर इधर उधर घूमेंगे। दादा जान, आप जो कुछ भी करेंगे लेकिन अब जोक भी करना है वो आपके भाई और उनके बेटे करेंगे। सुना आपने मैंने क्या कहा? घर में रहेंगे और आराम करेंगे, और अगर गए तो मेरे जनाजे पर से होकर जाएंगे, बस।
उसके घर का दरवाजा सब्ज था और हाजी काजिम महलूजी और काशानी वगैरह आए थे उसकी आयादत करने। मेरे ख्याल से यही है।
ये सब्ज है।
लोग अपने घर के दरवाजे का रंग बदलने के लिए अब तुमसे इजाजत लेंगे मोहतरमा।
इंशाल्लाह कि जन्नत का दरवाजा भी आपकी इजाजत से पहले खुलेगा।
सुनो जरा, तुम क्यों मेरे पीछे चली आई? तुम अब मेरे साथ बहस की जा रही हो।
माफ कीजिए, बहस करना मेरी आदत है और मुझे आपकी सलामती की फिक्र है।
तुमको मेरी सलामती की फिक्र नहीं करनी चाहिए। सलाम अलैकुम मोहतरमा, ये बहादुरी साहब का घर है
जी। आप कौन?
मैं
मोहतरमा, ये आपके शौहर के पुराने जानने वाले हैं। हमने सुना है कि बहादुरी साहब बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए आए हैं।
किसने आपसे कहा कि मेरा शौहर बीमार है?
मोहतरमा, मैं खलील हूँ, जावेद जान साहब का भाई। कल रात मेरी पोती ने आपसे फोन पर बात की थी। अगर आपको अपने शौहर की फिक्र है तो कबल इसके कि बात हाथ से निकल जाए मुझे उनसे मिलने दीजिए। वो मुझे पता चला है कि उनको बस से टक्कर मार दी थी।
बहादुरी तुमसे मिलने आए हैं?
छोड़ो मुझे।
100 दफा तुमसे कहा है कि किसी से नहीं मिलना चाहता मैं।
आइए बराए मेहरबानी आइए।
बहन,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सलाम।
सलाम अलैकुम।
सलाम।
मैंने कहा सलाम अलैकुम। सलाम किया है बड़े भाई? आइसक्रीम खाई है जो जबान चिपक गई है या जबान पर ताला पड़ गया है?
हाँ जी, ये ना सोचो कि तुम्हारा भाई जावेद यानी है और लड़की के साथ आए हो। नहीं, मेरी जबान है लेकिन तुमको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि तुमसे बात कर करके थक गया हूँ। तुम्हारी औरतों वाली जबान से आज ये तारीफ हो गई है। इतनी बातें करते हो, जब देखो अजीब अजीब बातें करते हो लेकिन किसी काम के नहीं हो। गधा बना दिया है हमें और फिर भी अपने उस बेमान भाई के हम सुफरा और हम निवाला हो। मेरे घर से बाहर निकलो कमीने, अगर मेरा हाथ लग गया तो 3-4 टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे सर के। तुमसे कहा नहीं था कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं मेहरबानी करके किसी को खबर ना होने देना? कहा था ना।
अरे क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप?
तुम खामोश रहो लड़की,
हम इसी तरह खड़े रहेंगे।
इसको अपने दिल की बातें कहने लेने दो। सही कह रहा है ये बंदा खुदा। एक अरसे तक ये गधे को घोड़ा और घोड़े को गधा कहता रहा है। दे लो गालियां तुम इतनी दो के तुम्हारी ये 2 मीटर की जबान थक जाए और कमरे में बंद हो जाए। लड़की, अगर इसने तुमसे मरबूत कोई बात नहीं की है तो बाहर जाओ। बोलो बेगैरत, मेरे कान तुम्हें ही सुन रहे हैं। मैं यहां अपनी रसवाई करने नहीं आया हूं। 3 डब्बे वाले मेरे लिए 2 तकिए ही काफी हैं। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुम्हारी जलील से बात और चेक भेजने का मामला कहां तक पहुंचा।
चेक भेजना? मैं तुम्हारी सफेद दाढ़ी से शर्म नहीं खाता क्योंकि तुमको खुद शर्म नहीं आती। 4-5 हड्डियों वाली खाल वाले, तुमको पता है वो तेरा भाई जो हराम खाता है, जो कुछ उसके मुंह में आया फोन पर मेरी बीवी और मेरे बच्चों को बोलते हैं और फिर आ जाते हैं मेरे पास चेक की और गैरत की बातें करने।
जलील ने ऐसी बातें की है?
नहीं, मेरे मामू ने की है। कहा था कि ख्वाब में देखोगे अगली किस्त कब आती है। देखो, तुम मेरे घर से बाहर जाते हो या खड़ा हूँ और इसी लकड़ी से तुम्हारे 14 तबक रोशन कर दूं। रियाकार कहीं के?
एक मिनट रुको बहादुरी, खड़े हो और हमारे साथ चलो। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हारे कहने का मकसद ये है यानी तुम्हारी बात रामीन से नहीं हुई थी कि रामीन तुम्हारी रकम लेके अपने बाबा से तुम्हारे पास आए?
मेरी रकम लेकर? ये क्या है, क्या इसलिए कि मैं गरीब हूँ?
बहादुरी, ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं। तुम चाहते हो मुझे यकीन हो जाए कि वो जो जाली चेक तुमने हाथ में लिया हुआ था और बाजार के बीच में खड़े होकर पता नहीं क्या क्या कहा, वो सब झूठ था।
बाबा, तुमको खुदा का वास्ता और लोगों के हुकूक और इंसाफ का जो तुम सरे पुश डालते रहे हो वो बास को देता है और बास को।
बेवकूफ आदमी, तो हम क्या बेकार थे जो यहाँ आए और तुमसे झूठ बोले? मैंने परसों अपने भाई से बात की थी, तय ये हुआ था कि तुम्हारा कर्जा एक जगह लिखे और रामीन को दे, और ये भी बात हुई थी कि भाई शाहीन की तरफ से खुद माफी मांगना चाहता है।
वाह भाई वाह, क्या बात है माफी की, यानी एक शाह फकीर से माफी मांगे।
तुमको इस माह रमजान की कसम, अगर इस जबान पर थोड़ा सा भी इख्तियार है तो सही से बात करो और तफसील से बताओ कि जलील ने तुमसे कर्जा वापस करने के बताले कुछ नहीं कहा क्या?
ये क्या जलील जलील किए जा रहे हो? क्यों, तुम्हारे भाई ने खुद अपने दफ्तर का पता मुझे किस लिए दिया था? अगर मेरा जोर चलता तो मैं इस महीने की किस्त उस जानवर से ले लेता। कल मैंने चाकू छुपा लिया था, क्यों? ताकि तुम्हारे भाई के सारे एहसानात का बदला चुका दूं और सब हिसाब पाक कर दूं। लेकिन देर से समझा, वो मुझसे 10 हाथ आगे निकला। उसने आदमी भेजकर सड़क के बीच में क्या किया, मुझे लातों और घूसों से मारा। अभी जाओ और उसको बता दो कि बहादुरी से निजात हासिल कर लिए। वो कुत्ते की तरह जख्म खाया हुआ अपने कमरे में पड़ा है। और मुझे एक दफा खड़ा होने दो, सिर्फ मुझे ठीक हो जाने दो। मेरी कमर सीधी हो जाए तो सर से पैर तक साबित कर दूंगा कि इस कमाश के लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। और जाओ उसे बता दो कि उसकी मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। हाँ,
यानी आप कह रहे हैं?
अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बस से एक्सीडेंट नहीं हुआ था?
बस पता नहीं, अंधेरा इतना था कि मुझे सही से नजर नहीं आया कि वो खबीस पीछे से आया और मुझे धक्का दे दिया। मेरा टुकना पता नहीं बस पे लगा या मिनी बस पर।
जनाब बेअदब व बदजबान साहब, जरा रुकिए, हमें भी पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं।
एक बात अपने बॉडीगार्ड से कह दो कि चुप रहे।
क्यों, जलील ने तुमको अपने दफ्तर का पता बताया और बाद में तुम्हारी आदमी भेज कर खिदमत की? क्यों इसने सिर्फ तुम्हारा पैर तोड़ा?
सात कुरान बीच में ले आओ हाजी साहब। एक बात का मुझे यकीन है कि आपके भाई साहब को इस किस्से की खबर भी नहीं थी, पता है क्यों? हाँ, हो सकता है किसी जमादार का काम हो, आखिर उनको तकलीफ देता हूँ, उनको पैसे नहीं देता, हो सकता है इन्हीं का काम हो, उनके हाथ में झाड़ू भी तो थी।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा के कामों का उसके मुखलिस बंदों को ही पता होता है कि एक बंदा ना मुखलिस बीमार हो गया है, बूढ़े आदमी या भाई के हिमायती, तुम मेरी बात सुनो, या तुम पीछे खड़ी हुई औरत, मैंने सिर्फ खुश ख्याली में तुमको नहीं बताया है, या वो बेइज्जती जो की है बिला वजह नहीं की है, तुम सिर्फ यहाँ बस बस करने आए हो क्या?
दादा बू चलिए, ये ना कुरान के लायक है और ना आपके वो भाई उसके लायक हैं, ना ही वो उस कुरान के लायक हैं।
मोहतरमा, बजायर तो आप बहुत ज्यादा नेक किरदार लगती हैं, ज्यादा बातें नहीं करो, तुम्हारे दादा अब्बू को बताऊंगा कि उस जावेद दियान को नहीं कहा था कि वो नेक किरदार नहीं है। सही बात की थी मैंने, जब ही बुरी लगी और मुझे सड़क पर मारा, ज्यादा मुंह ना खुलवा और जाओ।
चले दादा जान।
मैं तुमको बता सकता हूं कि किसका काम है, मगर मैं नहीं बताऊंगा। मेरे लिए अहम नहीं है कि तुम क्या सोचोगे बादरी, अगर तुम सच सच बता दो तो जवाब मिलने के बाद मैं खुद चला जाऊंगा। क्या इस पुराने बाजार में तुम इस नशेई को जानते हो जिसका खर्चा उसकी बेटी उठाती है?
इन दोनों का मामला यहाँ से मरबूत नहीं है, आए चले।
जानते हो?
अपने भाई से ये बात नहीं पूछते, शायद कंस्ट्रक्शन की आड़ में ये काम भी चला रहा हो और किसी को खबर भी नहीं हो। तुमने कहा बाप अपनी बेटी का मामला तय करता है,
और इसका पता है? एक आदमी है काफी अमीर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कि उसके पैसे कमाने का जरिया सिर्फ उसकी गाड़ी है। वो चाहता है अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी गाड़ी का सौदा कर ले। हाँ?
बाबा सैयद खलील, मुझे अपने मरहूमीन की कसम के ख्वाब में भी नहीं देखा है जिंदा रहूं कि तुम्हारी ये ड्रामेबाजी देखूं। यानी तुम उस आदमी को नहीं जानते और उसके कर्ज ख्वाहों को भी नहीं जानते? अरे अरे, ये सब किसने तुम्हें बताया है? हाँ,
बहुत अच्छा कर्ज ख्वाह है जलील, लेकिन कर्जदार कौन है?
नहीं जानता, यानी मुझे पहले पता चले कि तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है, बाद में शायद बता दूं।
अरे जबान दराज, तेरी अकल मारी गई है, यानी जलील को खुद नहीं पता कि किसकी गाड़ी का सौदा कर रहा है। मुझे भेजा है कि तेरे जैसे इंसान से पूछ।
हाजी अपने जबान की अल्फाज को समझो। हाँ, ये तुम और तुम्हारे वो भतीजे, तुम्हारे आबा और अजदाद और सारे पुराने लोग, हत्ता ये कि चापलूसी करते थे, चाहते थे कि अपनी मार्केट को, अपनी दुकानों को आबाद करें। जनाब सैयद गफूर रजाया तो अपना सामान भी बांध चुके हैं, हम तो वहाँ अपना कारोबार भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही रुकावट डाली है और अब मेरे सर पे चिल्ला रहे हो।
सैयद गफूर का पता है तुम्हारे पास?
जब तक बताओगे नहीं क्या काम है, बात नहीं करूंगा।
मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हारी मिन्नत नहीं चाहिए, रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा।
सिर्फ ये देखें कि सुबह से अब तक रोजे की जबान से कितनी बातें की हैं।
मैं कहता हूँ क्यों ना दरवाजा खटखटाऊं और खुद उनसे पूछ लूं।
किससे? लिहाफ सीने वाले का घर है?
नहीं, नशा बेचने वाले का घर है।
इससे पूछें कि जिसको मवाद बेचते हैं उसका नाम क्या है। दादा जान आपकी तबीयत तो ठीक है?
मैं चाहता हूँ पूछूं कि पता चले कि जावेद यान को जानता है या नहीं।
वाह वाह, आपने पूछ लिया और उसने जवाब दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पूछ लिया आपने दादा जान।
ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब गुलाम साहब का घर यही है?
अब जाइए यहाँ से, आप गलत जगह आ गए, यहाँ गुलाम पहले रहता था, आपको आपके मतलब की सब कहीं और से मिलेगी, 3 महीने वो यहाँ से जा चुका है, आप फिर जाइए यहाँ से।
बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र ये भी हमारे ही हिस्से में लिखा था। इंशाल्लाह 100 किस्म के नाम भी आपके भाई को नहीं जानते होंगे। मैंने कुछ गलत कहा? चलें चलें, घर लिहाफ दोस्त को तलाश करते हैं।
माफ कीजिएगा, ये थोड़ा फैला हुआ है।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता था।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हाजी साहब, आपकी इज्जत अफजाई है। आपके बड़े भाई जावेद यान साहब कैसे हैं?
अच्छे हैं, सब अच्छे हैं।
तुम जाओ खाने का बंदोबस्त करो, अगर कुछ आई होगा तो आवाज दे लूंगा। खुशामदीद, वहाँ क्यों, आइए ऊपर आइए। برائے مہربانی آئیے اوپر.
یہی صحیح ہے. ماشاءاللہ کام صحیح چل رہا ہے, گھر تو ماشاءاللہ اچھا بنا لیا ہے.
ارے کھانے کا سب کچھ ہے الحمدللہ, دو بچے ہیں اور ایک کرائے کا گھر ہے.
گھر کا مالک کون ہے؟
وہ کبھی کبھار آتا ہے چلاتا ہے, اب باقی رہ گئی دوسروں کی زندگی تو وہ بھی اچھی چل رہی ہے. حاجی صاحب آپ کیسے ہیں؟ واللہ ہم تو اکثر ادھر ادھر سے آپ کا پوچھتے رہتے ہیں. جاویدیان صاحب کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت تو انشاءاللہ ٹھیک ہے.
میں نے عرض کیا سب اچھے ہیں, اچھے ہیں, سب اچھے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے تھے, نہیں؟
ہاں میرا بڑا بیٹا آج فوج میں ہے اور دو بیٹیاں ہیں, اور آپ کی دعا سے ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں.
بہت ہو الحمدللہ,
مبارک ہو انشاءاللہ.
سلامت رہو بیٹی. حاجی صاحب میرے خیال میں آپ کو نہیں پتا.
نہیں بازار کا معاملہ نہیں پتا, اپنی کتاب کی دکان گھر پر لے گیا ہوں, اس بارے میں کوئی بھی خبر نہیں.
خود جناب جاویدیان صاحب نے آپ سے نہیں کہا؟ سچ یہ ہے کہ جہاں بھی گیا ہوں بتایا ہے کہ آپ کے بھائی نہیں ہوتے تو میری بیٹیوں کا جہیز نہیں ہو سکتا تھا. یقیناً وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کسی کو پتا چلے.
یعنی سید جلیل نے تمہاری بیٹیوں کا جہیز دیا ہے؟
ماشاءاللہ آپ کو دین کا زیادہ پتا ہے کہ قرض دینے کا ثواب اس سے زیادہ ہے کہ کسی کی بغیر کچھ لیے مدد کی جائے. انہوں نے بھی میری جو ماجرا دکان کا تھا ان کا قرضدار تھا. انشاءاللہ خدا ہر چیز میں مدد کرتا ہے, خدا ان کی ہر چیز کو سونے میں بدل دے. خدا جانتا ہے کہ ان کے احسان تلے دبا ہوا, کاش وہ افطار پر آئے ہوتے.
ایک منٹ تھوڑا صبر کرو سید غفور, آپ کی قرضداری کا معاملہ جو دکان کا تھا کیا تھا؟ کس طرح آپ نے اپنی دکان بھی جلیل کو بیچ دی اور اس کے باوجود قرضدار بھی ہو گئے؟
قرضداری کا مسئلہ دکان کا سب کو, ارے آپ نے بتایا ہے نہیں کہ کیسے ہم سے ملنے آ گئے. انشاءاللہ کہ مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یقیناً جہیز کے لیے لحاف سلوانا ہوگا آپ کو.
ادھر ادھر نہ بھاگو, معاملہ بتاؤ قرضداری کا, میں بتاتا ہوں میں کیوں آیا تھا.
بہت لمبا قصہ ہے, بلا وجہ آپ کی اور بیگم صاحبہ کے لیے درد سر نہیں بننا چاہتا. بخدا بیگم صاحبہ, خدا نے جتنی آپ کے شوہر کو اطاعت و قناعت کا جذبہ عطا کیا ہے, ان کے بھائی کو اتنی ہی سخاوت و بخشش کا جذبہ دیا ہے.
کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ؟
خدا آپ کی زندگی کو مبارک کرے, انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں. کب شادی کی؟
غفور مجھ پر نظر ڈالو, میرے پاؤں قبر میں ہیں اور احمد کی لڑکی سے شادی کروں گا.
معاف کیجئے گا محترمہ, یعنی سچ ہے میں نے نہیں سوچا تھا, یعنی سچ ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ واقعی احمد صاحب کی بیٹی ہے. سچ ہے میں سمجھا کہ پھر شادی کر لی ہے آپ نے. حاجی صاحب آپ کو سید الشہداء کی قسم, اس طرح تو نہ گھوریں, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے.
سید غفور تم کو اپنے اور میرے باپ کی قسم, تمہارے اور بہادری کے علاوہ کون سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا جاسوس ہوں؟
حاجی یہ کیا بات ہے,
پھر ڈرامہ بازی کر رہے ہو, تم کو تمہارے باپ کی قسم دی ہے.
حاجی صاحب ڈرامہ بازی کیا, اگر وہ قضیہ جو جاویدیان صاحب کو نہیں کہتا تو دو یا تین قصے زیادہ نہیں تھیں کہ جو انہوں نے ادا کر دی. باقی رہ گئی صرف وہ جو میری بیٹیوں کے جہیز کے عنوان سے دی تھیں, صرف وہی, باقی میرا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں تھا. جی ہاں.
اچھا کتنی, دو ہی قسطیں تھیں؟
معاف کر دیں حاجی, معاف کر دیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب بازار کی کنسٹرکشن کا کام رکا ہوا تھا تو میں تھک گیا تھا, آپ کے بھائی کے پاس گیا اور کہا دکان کے پیسے واپس مل جائیں, لیکن دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسوں کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا کیا کریں کہ سیخ بھی نہ جلے اور نہ ہی کباب. جاویدیان صاحب نے کہا کہ پیسوں کے بدلے میری گاڑی لے لو, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ بھائی صاحب کی گاڑی کی قسطیں بھی باقی ہیں. میں نے جب دیکھا کہ وہ بندہ خدا मुझसे ज्यादा फंसा हुआ है, तो उस गाड़ी को टैक्सी बना लिया ताकि किस्तें भी उतर जाएं और मेरा बोझ भी हल्का हो जाए, ठीक है ना? और यही काम मैंने किया।
ये गाड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वही गाड़ी है ना जो आपसे छीन ली गई थी ना?
यानी आपने जावेदियान साहब से सुना है या किसी और से?
नहीं, किसी और से।
अच्छा, यानी ये खातून बिल्कुल ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे पुलिस फिल्म में लोगों से करती है।
वो जानना चाहती है जो कुछ सुना है सही है या नहीं।
अच्छा, हाँ, एक हफ्ते पहले चोरी हुई है। मैंने जावेदियान साहब को कहा कि अगर हो सके कुछ मदद कर दें कि जो किस्तें बाकी रह गई हैं वो कुछ रुक कर अदा कर दूंगा, शायद ये मसला हल हो जाए।
क्या मुश्किल? क्या मुश्किल के गाड़ी मिल जाए?
मिल जाए? मुझे कहां से पता कि यकीनन मिल जाएगी? क्या बात कर रहे हैं जनाब?
माफ कीजिए ऐसे ही, लेकिन क्या आपको जावेद यान साहब आसानी से मिल गए थे?
आसानी? हाँ हाँ, यानी रोजा है, क्यों झूठ बोलूं? मैं उनके नए दफ्तर का पता नहीं जानता था, उनके बेटे को पैगाम दिया था।
अरे पापा, एक साल से किस्ते दे रहे हैं और अभी भी मकरूज हैं? क्या अपना घर बार सब बेटियों के पीछे रख छोड़ा है?
हाँ,
कितना कर्जा बाकी रह गया गफूर?
कुछ नहीं, आधा दे चुका हूँ, आधा इंशाल्लाह खुदा कहीं से पैदा कर दे। वो जो रह गया है इसी वजह से कि आजकल कम कमा रहा हूँ। मसला हो जाएगा, मैं आपके भाई के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा किस्तों का कम कर दे।
सैयद गफूर, खुदा कभी भी आदमी की मदद नहीं करता जो रेत के जर्रों की तरह झूठ बोलता है। तुम जलील से कहोगे तुम्हारे कर्ज को कम कर दे या गाड़ी के सौ देखो।
हाजी साहब, आप माशाल्लाह जानते हैं, सब कुछ खबर है आपको। किस तरह का आबरूमंद इंसान को झूठ बोलने वाला कह रहे हैं?
इसलिए कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपनी बदबख्ती का किस्सा सुना रहे हो और दांत निकाल कर हंस रहे हो। जलील ने तुम्हारी दुकान ले ली, गाड़ी और कर्ज पर रख लिया और हंस रहे हो। एक उधार कितना दे दिया तुमको कि उसके बदले अपनी गाड़ी का सौदा कर रहे हो और हंस रहे हो। गाड़ी तुम्हारी चुरा ली और अपने साथ ले गए और फिर भी हंस रहे हो। मैंने आज तक ऐसा पागल इंसान नहीं देखा।
दादा जान,
नहीं, इन्हें कहने दो, हमारी गरीबी पर इन्हें भी आंसू बहाने दो। मुझे तो इनकी बातें सुनने की आदत सी हो गई है। मैं अपनी पुरानी दुकान से परेशान था और सोचा था कि
दुकान को नया करने का एहसान न रहे। लालच ने लोगों को मार दिया है, मगर आप औलादे पैगंबर को तो सब मालूम है, तो फिर क्यों इस गरीब से पूछ रहे हैं?
मैंने कहा तुम जाओ।
अब मुझसे इन कानों से सुना नहीं जाता।
मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं पता है, अभी किसी से पूछने नहीं जाता, सिर्फ इसलिए कि एक मजलूम की जगह 40 मजलूम ना हो जाए।
सिवाय एक मजलूम के और कुछ नहीं। बाकी 40 मजलूमों को तो आपके भाई जानते होंगे, नहीं जानते क्या?
बहुत अच्छा, आप कह दें कि जाऊं। मुझे मेरे जद की कसम, हम दोनों के जद की कसम, जनाब जहरा की आबरू की कसम, किसी से कुछ नहीं कहूंगा कि इससे सुना है।
आपके भाई साहब ने भी अपनी जद की कसम खा खा कर, हजरत जहरा अलैहिस्सलाम की कसम खा खा कर मेरे शोहर और उनकी जेबों की सीढ़ी बनाई ताकि तरक्की कर सके।
तुमसे कहा ना जाओ।
कहाँ जाऊं?
जाओ यहां से। बात अब यहां तक आ गई है तो बताता हूं, मगर हजार कस्में खाकर भी कहूंगा कि उसको मैंने नहीं बताया कुछ। मैं झूठी कस्में खाने को भी तैयार हो जाऊंगा। जब मैं 1 मिलियन लेने गया, उन्होंने मुझे चेक दिए, मगर उसके दामाद ने मुझसे कहा कि अपने हिसाब किताब की खातिर आपको कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे। जानते हैं वो कितने के थे? 3 मिलियन के। मैंने आपके भाई से कहा हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था। वो कहने लगा दफ्तर के हिसाब किताब की खातिर है। मैं एक अंधे कुएं में जा गिरा। सैयद साहब, बाहर आना मेरे बस में न था। पानी की उम्मीद में खोता चला गया और मेरे पास बचने के लिए कोई रास्ता न था।
माफ कीजिएगा, आपकी गुफ्तगू से कुछ बू आ रही है। ये तो बताएं अगर आप कितने के मकरूज हुए हैं? 1 मिलियन, 3 मिलियन या उससे ज्यादा?
मोहतरमा रहने दीजिए, खुदा रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी चोरी होने के बाद कुछ बाकी नहीं रहा कि जिस पर वो कब्जा करे। मैंने रामीन साहब से कह दिया कि अपने वालिद से कह देना अब कुछ बाकी नहीं बचा, अगर चाहे तो जेल भिजवा दे या और फटे पुराने कालीन ले जाए। खुदा उसका भला करे, 1 साल की मोहलत हमारे लिए ले ली।
जिस कुएं की तुम बात कर रहे हो वो रिभा का कुआं है। क्या तुमने जलील से रिभा के पैसे लिए?
हाजी साहब, आप तो दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं। हाजी साहब, अब आप ये कहेंगे कि मेरी दीनो दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक कह रहा हूं ना? अगर अहवाल पुरसी के लिए आए हैं तो हमारी सुने और अपनी कहिए। ये पूछिए कि आपके भाई किसको सूद पर पैसा नहीं देते।
क्या ये तुम क्या कह रहे हो? बखुदा मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो रहा है।
काजी को धोखा देने से कोई फायदा नहीं। पुराने दुकानदार जितने भी थे सबने आपकी अमर बिल मारूफ और नहीं है मुनकर की आदत को सराहते हुए और आप पर भरोसा करते हुए ही आपके भाई के हवाले दुकानें की थी।
कैसी अजीब गरीब बातें कर रहे हो? जो भी मेरे पास आया मैं क्या तुम खुद जानते हो? मैं भी उनमें से एक हूँ।
मैं हूँ काशानी है, काजी मलूज ही साहब हैं। बाद में पता चला कि ये और आपके भाई हमकासा हो गए, पार्टनर हो गए हैं। मगर उस वक्त सबकी निगाहें आप पर जमी थी कि आप क्या करते हैं। हमने सोचा था जैसा आप करेंगे वैसे ही हम भी करेंगे। देखते हैं कि आप अपनी दुकान देते हैं या नहीं।
गफूर साहब, आप और आपकी जोजा के मुताबिक आप पर लालच का पर्दा पड़ गया था। आप किसी न किसी तरह से उस मामले को मेरे दादाजान की गर्दन पर डालना है। पहले कहा जलील का जासूस, अब कह रहे हैं कि बाजारियों का।
मैं तो कुछ कहना नहीं चाह रहा था।
मगर अब आप घुमा रहे हैं दादाजान। चलिए उठिए
जनाब। आपको खुदा का वास्ता, माफ कर दीजिएगा, आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जनाब, जो कुछ भी मैंने कहा है सुनिए अनसुनी कर दीजिएगा। अभी 1 हफ्ता हुआ है, जिंदगी को थोड़ा सा सुकून मैसर हुआ है।
सैयद गफूर, मैं जानता हूं कि यकीनन आपका अपने जद पर एतबार तो है। एक सवाल करना चाहता हूं, किसी ऐसे नशेई को जानते हो कि जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरह से प्लाजा से हो?
नशेई?
अरे अरे अरे, ऐसे ही साफ आदमी की आंखों में देखे तो झूठ नजर आ जाएगा। मेरा इस मामले के उश्र नुश्र से कोई ताल्लुक नहीं और उसके बाद के जो कुछ भी। अब आपके गफूर साहब ने बयान किया कि थोड़ा सा माल मसाला देकर उसे जलील के पीछे दौड़ा दिया तो अच्छा था। कि अब ये बहादुरी को कैसे मालूम हुआ कि आपके भैया के होते हुए सोतों के अकाउंट में इतनी ढेर सारी रकम थी? इंजीनियर साहब सुन थे, वरना मामला ये ना होता कि अब ये बहादुरी को कैसे मालूम हुआ कि आपके भैया के होते हुए सोतों के अकाउंट में इतनी ढेर सारी रकम थी?
क्या
दादा जान, आप ठीक तो है ना?
नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं हूँ। चलिए
दादा जान, कहाँ दादा जान, आकर मेरी बात सुनिए कि मैं क्या क्या कर रहे हैं। अब चला नहीं जा रहा, टैक्सी कर लेते हैं। दादा जान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि इंजीनियर साहब का मुंह बंद करने के लिए जलील साहब ने उसे नशेई बना लिया। आप पर कुर्बान जाऊं, अब ये मालूम नहीं कि वो जंजीरें आपकी थी या किसी और की। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, खाए कोई भरे, कोई गुनाह कोई करे, सजा कोई और भुगते, आखिर ये क्या है दादा जान? दादा जान, क्या कर रहे हैं?
जलील, तुमने लोगों के दीनों दुनिया के साथ क्या कर दिया है?
चुप कर जाएं।